నమో మహాపతన్నాయ కృష్ణపయ గురవేచంద్రాయ కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ
సాగర్ మే విశ్వ కా బా మేళా లగ రహా హోగా ఆజ్ సబ్ లోగ్ స్నాన్ కియే హోంగే కాల్ దేశ్ కే బాద్ మే పడతా హై కపిల్ ముని కా ఆస్థాన్ కపిల్ దేవ్ జీ గంగా కే కినారే ఆరాధనా కర్తే థే ఆరాధన కర్తే ఎక్ సమయ సబల్ మహారాజ్ కే పుత్ర అప్నే పితాజీ కే అప్రేత ఘోడే కో ఖోలతే హువే మారా హై ఘోడా ఇన్హోనే చోరీ కర్ దియా థా ఖోజ్తే ఖోజ్తే ఆయ్ आश्रम के पीछे बांध लिया था कि सबसे लगी इसके साथ दूसरी जगह ज्यादा दूर में क्यों नहीं लगाता इंद्र ने जानबूझ करके थोड़ा उनके आश्रम के पीछे बांध दिया। उनके बेटे आए और देखा तो उनको बहुत बुरा फला कहा, जैसे ये ऋषि हैं न चोर हैं और बहुत कुछ अपमान सूचक बातें की। और जब उन्होंने आंखें खोली और वो साथ थक गया जिससे उनके पुत्री से सब भर दुख हो। कपिलदेव जी भगवान के सबका वेश अवतार है, वो शंकराचार्य जो कपिल कहलाते हैं उनसे ये दूसरे हैं। वो अग्नि बन सकते और ये भगवत ये देवहूति के पुत्र और कर्दम जी के पुत्र थे। इन्होंने जलाया नहीं बल्कि अपने पाप कर्मों से ही वो जल करके भस्म हो गए। इसलिए भगवान और भक्तों का विरोध नहीं करने से। इसके बाद में सगर महाराज जी के दूसरे पुत्र थे अंशमान जी, उनके उनको तो उन्होंने देश निकाला कर दिया था। फिर दूसरे ने उनके पौत्रों ने खोजी, वंश में बहुत से राजा आए और अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए गंगा पुलाने के लिए चेष्टा की, नहीं आई। अंत में उनके वंश में भगीरथ महाराज आए, उन्होंने आराधना की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के अपने कमंडलों से भगवत चरणारविंद के धोए हुए पानी को देने के लिए कहा, किंतु पृथ्वी में कौन धारण करेगा। शिव जी की आराधना की, शिव जी भी प्रसन्न होकर के हरण करेंगे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से भगवान वामन देव के धोए हुए चरणों को, उस पानी प्रक्षालन को छोड़ दिया और वहां से गंगा जी की धारा हिमालय के ऊपर में गोमुखी के ऊपर में पड़ी। शंकर जी ने अपने जटाजूट में धारण कर लिए। इसके बाद में गंगा को उन्होंने छोड़ा नहीं, ये भगवान की चरण धोकर जल है। बहुत दिनों तक वहां रखा, फिर उन्होंने उनकी आराधना की। भगीरथ जी ने प्रसन्न होकर के उसमें से थोड़ा सा छोड़ दिया। वही भगीरथ लेते 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 जब बंगाल में आए, गंगा जी ने कह रखा था, पीछे मुंह करके मत देखना, आगे आगे चलते चलना, मेरी कलकल ध्वनि होती जाएगी। जब बंगाल में आए तो देखा एक जगह उनकी कलकल ध्वनि बंद हो गई। गंगा जी कहाँ गए, देखा जी तो यहाँ आ नहीं रही, आप पानी तो आ रहा थे तो गया कहाँ। हम देखा जी वहीं पर ऋषि बैठे हुए थे जन्नू, उन्होंने गंगा जी को पूरा ही पान कर दिया। फिर उनकी आराधना की तो उन्होंने अपने जान प्रदेश से काट करके निकाल करके और गंगा को छोड़ दिया। इसलिए जाह्नवी कहलाई उनकी पुत्री। जाह्नवी को लेकर के महासागर के तट पर गए, लाखों शाखाओं में भी विभक्त होकर बड़े प्रेम से सागर से वो मिली और वहीं पर कपिल देव जी के आश्रम के आसपास में उनके जो लाखों पूर्वज 7,000 जो मरे हुए थे, केवल हड्डियां कुछ शेष थी और बाकी सब शेष खत्म। उस हड्डी के स्पर्श करने से, उस हड्डी से कभी आत्मा का संपर्क रहा हुआ, किंतु आत्मा से हड्डी का क्या संपर्क है। उस हड्डी के संपर्क से कभी आत्मा का होगा और वो आत्मा कर गई। हड्डी का तो जैसा हुआ वो तो हुआ, तो इसको किंतु आत्मा का जिससे संपर्क था, कभी उसने निवास किया था, बहुत दूर का संपर्क, जैसे कृष्ण के अंगों में रस्सी, रस्सी से बंधी हुई ओखल, ओखल से पेड़ का स्पर्श और कर गए दोनों, ऐसे ही ये भगवान के अपूर्व महिमा है। उसी प्रकार से भगवान के तदीय वस्तुओं का भी ऐसा प्रभाव है जो कि तर्क के अवगत है। कहां वो राख पड़ा हुआ है, हड्डी पड़ी हुई है राख, और गंगा जी का पानी स्पर्श किया, गंगा जी को उसका दिए करते हैं और उसका ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव कि उसके प्रभाव से वो हड्डी में लगा या उसके राख में लगा। अब तो वो राख भी कितने हजार वर्ष हो गए थे, वो तो मिट्टी बदल गई, उस मिट्टी में केवल स्पर्श किया और उसे उनके साथ पूर्वजों की आत्मा का कल्याण हुआ, वो वैकुंठ सिद्ध है। तो गंगा जी का स्पर्श यदि कोई स्पर्श हो, उनका संग हो, उसमें स्नान हो, तो उसका क्या प्रभाव, ये जरूर प्रभाव होता है। तदीय वस्तु महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे कल्पन वैष्णवे, और इसमें ये गंगा तुलसी, तुलसी भी आ जाएंगे और वैष्णव लोग भी हैं इनमें, सम पुण्य और अनुराजन भी, इनको बहुत कम पुण्य है, इनको विश्वास नहीं जाता। कम पुण्य माने कम पुण्य किसको कहते हैं,
अल्प सुकृति वाले,
जिसको थोड़ी सी सुकृति है उनको विश्वास नहीं होता है। हम साधन भजन करते हैं, मैं समझता हूँ कि साधन भजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सदीय वस्तुओं का संग है, जैसे वैष्णव, हरिनाम, तुलसी, गंगा, यमुना, ब्रजधाम। इसलिए विश्वनाथ उन्होंने हमारे रूप गोस्वामी ने बतलाया, वृंदावन में रहकर भजन करो, नवदीप में रह करके भजन करो।
स्थान ब्रजी
ब्रज मंडल, वहाँ पर मथुरा मंडल, ब्रजमंडल,
क्षेत्रमंडल,
गोलमंडल, ये सभी उसके अंदर उसका महात्म्य ऐसा। भजन भी कम होगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा रहेगी तो उससे काम हो जाएगा। स्वल्प पुण्य बताऊँ मैं, साधु संघ भागवत श्रवण मथुरा वासी मूर्ति श्रद्धा श्रवण जन्म यही पांच ऑल पावर संघ। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग इन धामों का आश्रय करके, भगवत धामों का आश्रय करके और भजन। इसलिए हम लोग साधन क्या कर सकते हैं, वो आराम से खाते पीते हैं और सब कुछ करते हैं। रुष्णातन जैसा साधन कितना कठिन है। प्राचीन आनंद भजन अतुल अनुष्ठान बताऊंगे, नए राष्ट्र इन जलत भक्ति ले सत्य ले साल विश्व दृति सवा कर्णाल। इसलिए साधन भजन बहुत कठिन है, किंतु वृंदावन का आश्रय यदि करे, उनका धाम का आश्रय करे, उसमें विशेष लीला स्थलियों का यदि कोई आश्रय करके हरिनाम को आश्रय करता है और साधु संघ उसका होता रहता है उच्च, अपने से अधिकतर उच्च साधु संघ, तो उसकी ऐसी गति हो जाए। इसको दिखलाने के लिए भगवत सदीय वस्तुओं का वहाँ पर ये हुआ, जिससे लाखों लोगों का उद्धार हो गया। तो गंगा के स्पर्श से वो भी राख पड़ा हुआ उसे। इसलिए यदि हम लोग साधु संघ न छोड़ें, धाम को न छोड़ें, गुरु वैष्णव का पदाश्रय नहीं छोड़ें, तो हो सकता है, भगवान की करुणा हो सकती है। अभी हो, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में जरूर होगा। और यदि साधु संघ छोड़ दिया तो कुछ नहीं। इसलिए साधु संघ प्रयास में रह करके को पूर्ण विश्वास के साथ, एक नास्तिक व्यक्ति नहीं विश्वास करना चाहेगा किंतु विश्वास करना चाहेगा। इसलिए आज के दिन में मकर संक्रांति के दिन वहां पर लोग जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा भारी मेला लगता है। वहां पर लोग लाखों लोगों को कंबल बांटते हैं, अन्न देते हैं, कपड़े देते हैं, तरह तरह की चीजों को बांटते हैं और फकीर होकर के वहां से लौटते हैं। इसलिए बतलाया गया कि बार बार इसलिए कहा, किंतु भगवत भक्ति की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं होता। ये कर्म मार्ग है, लाख दान दो कृष्ण प्रीति से इसका संबंध नहीं है, किंतु यही वैष्णव की सेवा यदि की जाए, पत्रम पुष्पम फलम तो यदि कोई दे, वैष्णव को दे, किंतु वैष्णव भी वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव नहीं है उसको वैष्णव मान करके देते हैं तो वह फल नहीं होगा, और जो वैष्णव है वो लेते नहीं है। और ये नहीं कहते कि मैं वैष्णव हूँ। इसलिए खूब सावधानी के साथ में भगवान से प्रार्थना कर ये वैष्णवों का संग दें, उसमें हृदय की कर्म मार्ग की मैल दूर हो जाए और उनके चरणों में शुद्ध प्रेम हो। तो आज सूरज दक्षिण दिशा से अब धीरे 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 उत्तर दिशा में आएगा। विषुवत रेखा पहले पड़ती है, उसके दोनों रेखाओं के बाद में क्या पड़ता है,
कर्कट रेखा,
मकर रेखा। मकर रेखा के बाद में फिर कर्कट रेखा पड़ती है, उसके बाद में और सब रेखाएं। उत्तर और दक्षिण से जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ में होती हैं अक्षांश होता है। सूरज पूर्व और पश्चिम की रेखाएं जो है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्कट रेखा, इन रेखा जब स्पर्श करता है उसके अनुसार में ऋतुएं बदलती हैं। सूरज अधिक से अधिक संक्रांति आज के दिन माने 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को अपने लास्ट पॉइंट पर जाता है दक्षिण, उधर का वो मकर होता है, और इधर में हमारा मकर है भारत वर्ष में करीब वाराणसी इत्यादि के समीप से मकर रेखा जाती है, विषुवत रेखा जाती है लंका से पास होकर के। जब वहाँ आती है तो गर्मी का दिन होता है, और उससे भी अधिक गर्मी का दिन हो जाएगा, उसको पार करके जब इधर आती है तो हमारे लिए, और सूरज जब विषुवत रेखा को दक्षिण में जाता है तो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। लोग सामाजिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति और आत्मा की उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में निर्देश दिए हैं, ऐसी विधियां बनाई हैं जिससे कि हमारा शरीर उपयोगी हो, मन हमारा उपयोगी हो, किस चीज के लिए, भगवत भजन के लिए और आत्मा का कल्याण। यदि सब समय एक आदमी रोगी ही रहता है तो क्या भजन करेगा, सब समय रोग ही रोग बचपन से लेकर के तबीयत ठीक ही नहीं, क्या भजन करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कहा, देह रोग दूरे रोगे, इसलिए संसार वासना दूर रहेगी और संसार के रोग नहीं रहे, इसलिए रोग न रहे हम लोग हृष्ट पुष्ट रहते हुए भगवान का खूब सुंदर चित्र से भजन करें, इसके लिए व्यवस्थाएं। जाड़न के दिनों में विशेष करके माघ महीने तक, अब ये माघ चल रहा है, ये माघ महीने की संक्रांति है, शरीर में कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, स्निग्ध पदार्थों की, इसलिए उन्होंने व्यवस्था की जो तिल खाया जाए, तिल खाने से शरीर पुष्ट भी होगा, निरोग भी रहेगा, पेट क्या तड़ियां सब स्निग्ध रहेंगी। जो गरीब है वो कहाँ से पाएंगे, उन्होंने कहा गंगा जमुना आचा, और ये जाड़े के दिन में सवेरे को ये स्नान करता है ठंडे पानी से तो उसको गर्मी सर्दी नहीं लगेगी, ऐसी व्यवस्था है, वो प्रकृति का ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि संगम में खुला हुआ मैदान भरे, संगम जहाँ पर नदियों का संगम, जहाँ गंगा जमुना का संगम प्रयाग, या गंगा जी जहाँ समुद्र में मिलती है, बस आप रणबाहों से स्निग्ध और कोमल, और उसमें डुबकी लगाए सवेरे 4 बजे। माघ महीने में रखा एक महीना वहां पर रह करके स्नान करेगा प्रतिदिन, और वहीं पर हरि कथा करे उसी टेंट कपड़े का लगा कर, ये पहले तो टेंट भी नहीं लगाते थे, आग जला दिया बस वहां कठोर कितना, और एक महीने स्नान करो, भागवत पुराण इत्यादि शास्त्र सुनो, हरि नाम करो, हाँ जरूरी था, इसलिए ठंड आपको नहीं लगेगी, वो भगवान के कुछ है। और जो लोग ठंड से जितना डरते हैं और स्नान नहीं करते उनको उतना ही ठंड लगती है, और लेजीपन बना रहेगा, आलस्य बना रहेगा, इसलिए सवेरे स्नान करके, विशेष करके आज के दिन में जो गया गंगा में स्नान करने का बहुत ही महत्व, और वहां पर दान देने का महत्व, तिल दान दे, खिचड़ी, खिचड़ी मैंने चावल दाल मिला हुआ, और उसके साथ साथ में तिल हो, तिल के लड्डू हो, गजक हो, ऐसी सब चीजों की व्यवस्था की गई। अपने ही मत खाओ, अपने तो खाओ और गरीबों को भी दो, साधु संतों को भी दो, ठाकुर जी को अर्पण करो, इसलिए इसी महीना है। तिल का पर्वत बना करके उसको दान करते थे, गैया को दान करते थे दूध, ये कोई वो सब प्रथाएं सब दूर होती गई, और ये नास्तिकता फैलती गई, भजन दूर गया, लोगों की शांति भी चली गई। अभी थोड़ी थोड़ी दिखलाने के लिए है, अब उस तरह से नहीं देते, हमारे बच्चे ठीक रहने का रोग दूर हो जाए उसको ऐंच करके रख देते हैं साधु संत को दो, जैसे जितना रोग जो कुछ है सब, इसलिए मत लेना चाहिए साधु संत को, ऐसी भी चीज मत लो। साधारण रूप में भिक्षा जाकर के थोड़ा सा आटा चावल ले आओ, ये सब नहीं करना चाहिए। विशेष तौर से वैष्णव लोग दान में नहीं जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो आज सब लोग स्नान किए होंगे और संक्रांति के दिन में ये लोग लेंगे और फिर अपने अपने काम में भजन में लगेंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य भजन का है, इन पर्वों से विशेष करके हम लोगों को विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी गंगा जमुना में स्नान करने में कोई हानि नहीं, अच्छा ही है, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा होगी। यदि कुछ देना है तो वैष्णव को लेंगे, वैष्णव को देंगे, इस तरह से करते हुए हम लोग भगवान का भजन करते हैं। कृष्ण ने और गोपियों ने इन सारी जितने व्रत त्योहार हैं सब तो लिया, किंतु राधा कृष्ण के त्योहार में उन लोगों ने तो बताया। हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्या किया होगा, वो लोग भक्ति किए होंगे, जा रहे होंगे संख्या पूर्वक नाम गान काल अनुसार निद्राहार विहार का आसन राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुर आनंदे सम्मोहित वंदे रुक्षनासन गुरु श्री। इस तरह से ये हमारे गोस्वामी लोग मनाए। हमारे नंद बाबा आज कृष्ण के कल्याण के लिए कृष्ण निरोग रहे तिल के लड्डू और गायों का दान किया। यशोदा मैया ने दान किए तिल के लड्डू, तिल, घर में खिचड़ी पकाई, कृष्ण को भी भगवान का भोग दे करके नारायण का कृष्ण को खिलाया होगा। आज विशेष करके श्रीमती जी गई होंगी नंदगांव, यशोदा जी ने आज क्या कहा होगा, कहा जे देखो आज तिल हमारे घर में ये है, तो तिल से बने हुए सुंदर सुंदर मनोहर लड्डू अमृत के लिए इसे मिला करके बनाना, और क्या अमृत के लिए
अमृत गुटी का
मनोहर लड्डू और रस बड़े और क्या क्या चीज आज बनी होगी नंदगांव में श्रीमती जी ने बनाया होगा। और सरोहिणी के द्वारा यशोदा जी कृष्ण को परिवेशन कराएंगे, ब्राह्मणों को बुला करके तीन कृष्ण से स्पर्श करके ये कृष्ण का कल्याण हो, सब ब्राह्मणों को शांडिल्य ऋषि इत्यादि को दी हुई और वो लोग बड़े प्रसन्न होकर के कृष्ण को आशीर्वाद कर रहे हैं। आज के दिन कृष्ण को पावन सरोवर में लेकर के स्नान कराया होगा, और यदि वृंदावन में होंगे तो यमुना में स्नान कराया होगा। राधा जी सब चीजों को प्रस्तुत करके कृष्ण खा रहे हैं और वो देख रही होंगी, और कृष्ण प्रसाद पाते हुए तिरछी आंखों से वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कितन रहे हैं,
ललितादी
सखी हरी नय मेरा कौन है, ललितादी सखी गणी उधर उनकी तरफ में खा रहे हैं इधर, और छल बल करके राधिका जी की तरफ में देख रहे हैं, सखियों की तरफ में देख रहे हैं। इस तरह से उनका मिलन महोत्सव आज होता होगा और कृष्ण उसका स्वादन कर रहे होंगे जो कि उन्होंने बनाया होगा। सारा ब्रज आनंद में डूबा होता होगा। इस तरह से आप लोग You can speak something, what I told. हाँ आज के दिन नहीं, वो गया था जब हम लोग वृंदावन में रहते हैं ना, वो जब हमारी पूर्णिमा को समाप्त होता है वो माघी पूर्णिमा के दिन में संन्यास के लिए कूदे थे।
आज पूर्णिमा नहीं है,
पूर्णिमा तो नहीं है, अरे इसी ऋतु में डूबे गए थे, छोड़ा
माघ
महीने में। आज क्या है?
पूर्ण संक्रांत है, काल
संक्रांत। पूर्णिमा कब होगी?
पूर्णिमा 23 को है,
23 को। वो देखो उसी समय में महाप्रभु कैसे भाव में, कितना ठंडा ठंडा नहीं है, ठंडा। और रात में 12 बजे, रात में 12 एक बजे 2 बजे रात में, और कृष्ण कृष्ण कहते हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए मैया को पत्नी को छोड़ करके और पार करते हुए कहा कंटक नगरी में गए। वो कंटक नगरी इसलिए कहा कि महाप्रभु जब कि जब निकले होंगे ना तो उनके कंटक सब निकल गए होंगे, इसलिए कंटक। कौन सा थोड़े नगरी वहां पर, कहां कहां थोड़े हो गए, हो सकता है।
और आपने बताया था कि ब्रजवासी लोगों ने गंगा जी नहाने की इच्छा की तो कृष्ण गंगा जी को बुलाया, तो वो माना चाहिए आज के प्रकट थे,
आज के दिन तो लिखा है कहीं,
आपने बताया था।
जैसे मंसी गंगा का आज का प्रगा ये हो,
गंगा का स्नान करना चाह रहा
है तो गंगा दशा है,
नहीं
ऐसा भी देखने से मालूम हो मुझे करने। तो यदि ऐसे हो तो ब्रजवासियों ने कृष्ण से निवेदन किया कि हम गंगा स्नान करना चाहते हैं। वो गंगा माता ठाकुरानी आज ही के दिन में स्नान करने के लिए आ रही थी पूरी वाली, तो फिर गंगा वहां पर पहुंच गई, उसमें उन्होंने स्नान किया और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गई। उन लोगों ने उनको पकड़ लिए, इतने में जगन्नाथ जी ने स्वप्न दे करके कहा कि इनसे तुम लोग दीक्षा लो। सब बाद में सब लोगों ने दीक्षा ली। ये सब स्मृतियां हैं। आज ही के दिन मानसी गंगा वृंदावन में प्रकट हुई, उसमें सब ब्रजवासी लोग स्नान करके कृष्ण ने अपने मन से उन्होंने प्रकट कर दिया। यदि कृष्ण के चरणों के से ये गंगा निकलती हैं और कृष्ण के मन से उनके शरीर से यदि ये गंगा नहीं तो कौन से होगी? इन्हें मानसी गंगा का भी महत्व है, जिसमें कृष्ण स्नान करते हैं, किल्लोल करते हैं, जिसमें पारंग घाट है, जिसमें नौका विलास कृष्ण की होती है, गंगा में थोड़े होती है। ऐसे ऐसी सब लीलाएं होती हैं, वो मानसी गंगा हमारों का कल्याण करे, ये उस गंगा से भी श्रेष्ठ है। इसलिए गंगा उसी के माध्यम से ब्रज में आती हैं और गंगा जी अपना अपने को कृतार्थ समझते कि हमारा जन्म सफल हो, ये ब्रज में कृष्ण ने हमको बुला दिया। उनसे मिलने के लिए यमुना जी देखी जी हमारी बड़ी बहन आ रही है, तो यमुनावती वही गोवर्धन के पास में वो भी यहाँ चली गई। हो सकता है कि दोनों में मिलन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। आप लोग खूब ठग ठीक से भजन कीजिए, समस्त जितने भी हैं हमारे कर्तव्य है सबका उद्देश्य भजन का है। बोल दीजिए यही आज मैं अधिक बोलूंगा तो
took his heart and he wanted near Kapil's ashram. Kapil was doing tapasya over there, aradhana. Maharaj was using the word aradhana. Neither he was using the word austerity, nor he was using the word meditation. He was using the word aradhana. He was not a Kapil, which is known here as Sankhyacharya. Sankhyacharya Kapil is a person. He has propagated this atheist Sankhya Yoga, atheistic Sankhya Yoga. But this Kapila was Chattavesh avatar of Krishna. And he was son of Devoti. So he was absorbed in his aradhana at a time in the camp, and he affixed a horse near his ashram. And then thousands of sons of Sagar came to find out that horse, and they found it over there, and they saw that Rishi is doing aradhana there. Instead of investigating the fact, they became furious against that Rishi and chastised him, abused him, and did lot of apraadh against his lotus feet. When he opened his eyes, not because of his opening eyes, but because of their own Vaishnava apraadh, they all got burned over there, intentionally. So, they were there, their souls were in restless position at that time. Many of his descendants tried to bring Ganges over there to deliver them, but no one could do it. At last, Bhagirath, India's descendant, he did it. He first freed Brahma, and now Brahma was having Ganges in his commander. What was that? It was the water which he got by bathing the foot of Vaman, Lord Vaman. So he threw that water, and where this Ganges will go, earth was not competent enough to hold it. Then Lord Shiva came forward, he took Ganges on his head. He was so much pleased to have Ganges on his head that he was not ready to leave it. Then Bhagirath again prayed to Lord Shiva. Then Shiva just opened his one lock, and from there part of Ganges started flowing out. It was conditioned that Bhagirath, you move further, don't see back. I will come. You will notice there is a kalkal. You will hear this voice, but don't see in the back. When Ganges came near to see at this place, now this, the voice of kalkal stopped. And Bhagirath was very much disturbed that what happened. He saw there was a rishi. Maharaj told his name Jhanu.
Jannu.
I can't pronounce exactly. Well, he drank whole Ganges. He found that rishi drank whole Ganges. And then Bhagirath started praying to that rishi that please, be pleased. Then he cut his thigh, and Ganges came out from his thigh. So Ganges became his daughter that way, and he is known as Jahanavi. So from there it went to Ganga Sagar. When it went to Ganga Sagar, where all his ancestors, thousands of his ancestors were there, Maharaj was explaining who were there. Were souls were there? No. Bones were there. Even bones became ashes. Even ashes became also mud, because it was millions of years passed away since this accident took place. But when that Ganges touched the bones, the souls which once had some connection with those bones got liberated. And what is Ganges? Maharaj was saying this shows the potency of Tadiya Vastu. Tadiya, it was not Krishna, it was Krishna's dear thing, Ganges, foot bathing of Krishna. So Sadhya Vastus are very potent. Just as in case of Damodar Lila, Krishna is bounded by rope and rope is connected with a mortar and a mortar connected touch the trees and tree got liberated. Similarly, the Ganges which is Sadhya Vastu, it is so powerful that it liberated all those ancestors of Bhagirath. Liberated means they went to Baikuntha. Maharaj said they went to Baikuntha. Then Maharaj quoted, that is why he says, Mahaprasad Govinde Nama Prasanna Vaishnava. So Vaishnava here, Ganges is here, Vaishnava. Maharaj says that to, he is declaring here that to his, but he believes, Maharaj says that he believes that it is not possible for us to do bhajan. But if we take shelter of Sadhya Vastu, then we get the strength to do bhajan. If we just compare what is bhajan, then we see that bhajan is done by Sanatana Goswami, Swarup Goswami, and we are just laughing, eating and drinking and enjoying, and then we are imagining that we may do bhajan, it is impossible. That is why it is said that instead of doing chanting is not that much important as it is important to take shelter of Sadhya Vastu. Maharaj was telling that it is more important to take shelter of Sadhya Vastu. That is why our Acharya has said that we should take shelter of Dham. In Dham we should take shelter of Vaishnava, and when we take shelter of Dham, Guru and Vaishnava, and after taking their shelter, when we do chanting, then we can do little bhajan. And it may be possible that in some birth, because of this strength, we will be able to do real bhajan. So Maharaj says that if we go to Ganga Sagar today, we will find so many people are giving donations. What donation? What type of donation? They are giving charity. This charity is of silk. You must be knowing this tail, what you call in English? Sesame seed. Very difficult to remember what this normal letter. So whom this charity should be given? It should be given. Generally, it is a tendency that they give it to the poor people, but or to the sadhus also, thinking them to be sadhus, but they are generally not sadhus. If it is given to Vaishnava, then it is real good charity. We should give it to Vaishnava. But generally Vaishnava don't take. If one is real Vaishnava, he does not take. And if we want to give someone, then we should give to Vaishnava. This, how this thing will communicate is very difficult. So, Maharaj was saying one thing is very clear. In our all the scriptures, where it is said we should go give charity of this till and all is mentioned in our scriptures. But the inner spirit of this mentioning is that we may be able to do some bhajan. In this cold, it is required during this month, body requires some energized and heated things. Still gives lot of energy to face this course. Maharaj was saying that the purpose of our this system is not that we should get entangled into one charity and this and that. The purpose is that those people who are not very rich, they will get still and all in charity. And Vaishnava, those who don't do anything, they will get it in by donations from their disciples and all. When we eat it, we have enough charity and energy to face cold during this day. Maharaj is saying, it is said in scripture that during this month, which is called Magh month, it is full cold on its extreme. We should take bath in Sangam. When one takes bath early in the morning, say at about 4 a.m. like this in Sangam, in open place, in such a case, cold does not come to that person. He does not get affected by cold. Nowadays we take bath late in the day and that also hot shower. That is why we are always suffering from cold. So these all arrangements in our scriptures have been made so that our body should remain without enough to do bhajan. Even Śrīla Bhakti Vinod Thakur in his one sentence is, if a person is sick and sick and from his birth and youth he is sick, he cannot do bhajan. So we should adopt our life in a process, in this such process that less disease should come to us. And so that we can do bhajan. So Maharaj was saying, these were being done in earlier days. Nowadays, the things are only in a very, very distorted way. What happens that the mothers or parents, they will just do this varna, nirvanchan over their children, subtle and all, so that all misfortune of their child should come in that charity and then they give it to sadhu. So that sadhu should go with those problems. So we should be very much careful that we should not take charity from every person like this. And we should be careful for this. Maharaj was warning us. Then Maharaj comes to the real thing. That what will be happening there in Braj today? This what is happening over here? What will be happening in Braj? He was saying, Vaishnava who are living in Braj, they are always doing the same bhajan, which some people may be doing today, taking bath early in the morning, doing bhajan, doing chanting and all. But if we go to Nandgram, Yashoda Ma will be giving still in charity, so that Krishna must be hale and hearty every day. She will be preparing khichdi and offering it to Lord, giving it to Krishna and distributing. Today especially, Srimati must have been called to Nandgram. It is a very, very special occasion. And Yashoda Ma must have told her that today here are so many chesney seeds, and you should prepare so many things. Maharaj was giving some names, Manohar Laddu, and Amrit Keri, Ras Bade, and like this, so many things. Radha Rani must be preparing for Krishna today, especially. And then after such a very nice preparation, with the help of Rani, Yashoda must be serving it to Krishna, and Krishna must be eating it. But how he must be eating? He is eating here and Christ glance is somewhere else. And Radharani is also seeing. She is trying to notice that how he is relating what he has prepared. And Krishna is also trying to show how he is relating. So this all Leela must be taking place over there. Meanwhile, Navin Prabhu said that once Maharaj said that today Mansi Ganga, probably Mansi Ganga was also appeared. Krishna from her heart, man, Mansi Ganga was appeared. So Krishna was Maharaj was comparing both Ganges. This Ganges is this came from the foot bath of Lord feet. This is the water of Lord foot bathing. And
Vamandev.
And that Ganges has come from the heart of Krishna, which is must be more potent. Here Krishna is taking bath and doing vilas with Radha Rani. Both festivals, both Leela and every such Leela is taking place. So whoever goes and takes bath in Mansi Ganga is far more than that taking bath in this Ganges. If we take bath in such Mansi Ganga, our karam kali will be established, that we are still busy in karmic creation. So this reminded again Mahaprabhu's Leela also. This is the month of Mars, and in the Puranmasi of Mars, Mahaprabhu jumped into, he took sannyas. How he took sannyas? He left his so young beautiful wife and mother and he jumped into Ganges. Maharaj was saying, midnight at 12, so chilly cold, without having any fear of coolness of water, he jumped into Ganges and he came out at the place which is called Kandak Nagari. So Kantak means thorn. Kantak means thorn. So Maharaj said that why the name must be Kantak Nagari? That it, we cannot say that it should be full of thorns. In fact, all those thorns which Mahaprabhu had, he has left. So he has come out as a free from thorns. So that place is called Kantak Nagari. Or maybe any other reason. Romantic
garden. That is the main part.
And then another reason now Maharaj is telling, Navin Prabhu is also telling, that because he has erected on his hand and he took the sannyas.
अष्टसात्विक विकार में ये रोमांच सब जगह पुलप जिसको का सेमल के कांटे की तरह
महाप्रभु when he jumped into here in this river he was totally absorbed in mood of Radharani and Krishna that he was having अष्टसात्विक विकार and this romance came and because of this romance his hair became so straight and erected that they appear like thorns. So Kantak Nagari. And Maharaj was also giving one example of Ganga Mata. When there was a Lady Ganga Mata, Ganges came to her and went into Jagannath Puri. And she took bath there and Ganges took her to Jagannath Puri temple. So Maharaj was giving this example only that when we have such festivals, this should remind us of our such type of leader. For Premanande!
Hare Krishna, Hare Krishna,